नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रमुख मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ अपने प्रस्तावित विलय की समय सीमा 21 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाने को कहा है। कंपनी ने रविवार को ये जानकारी दी। CMEPL को पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के नाम से जाना जाता था। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने प्रस्तावित विलय को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए कलवर मैक्स और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया है। विलय के बाद यह भारत का सबसे बड़ा मीडिया समूह बन जाएगा। जेल ने कहा, हम आपको सूचित करते हैं कि कंपनी ने अपने BEPL और CMEPL के बीच 22 दिसंबर 2021 को हुए विलय सहयोग समझौते के तहत विलय योजना को प्रभावी बनाने के लिए तय तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुनहरे दौर में है। दिनेश खारा ने कहा कि दूसरी छमाही में कृषि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। SBI चेयरमैन के अनुसार FMCG डेटा सकारात्मक रुझान दिखा रहा है और सभी सेक्टर्स में तेजी आ रही है। दिनेश खारा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं कहूंगा कि शायद अर्थव्यवस्था सुनहरे दौर में है। कृषि के क्षेत्र में जहां पहली छमाही में थोड़ी चिंताएं थी, वहीं दूसरी छमाही में हमें कृषि क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियां तेज होती दिखनी शुरू हो गई हैं। जब हम FMCG डेटा को भी देखते हैं तो दूसरी छमाही बहुत स्पष्ट रूप से सकारात्मक रुझान दिखा रही है। मुझे लगता है कि सभी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के साथ जारी प्रौद्योगिकी युद्ध के बीच चीन इस मोर्चे पर एक चक्रव्यूह में घिर सकता है। चीन के एक शीर्ष सरकारी थिंक टैंक ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ती रोकथाम से निपटने के लिए अगर नए निवेश और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा नहीं दिया गया तो देश मध्य प्रौद्योगिकी व्यू में फंस जाएगा। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा, चीन का विनिर्माण क्षेत्र अभी भी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, जो इसे अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों से बाधा का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, बाद में विकसित होने वाले देशों को आमतौर पर औद्योगिक उन्नयन और उच्च आय वाला देश बनने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास मूल तकनीकी की कमी होती है। रियल एस्टेट कंपनी MR इंडिया अपनी विस्तार योजनाओं के तहत गुरुग्राम में अगले 4 साल में लग्जरी आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। दुबई के MR प्रॉपर्टीज की इकाई MR इंडिया ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सेक्टर 62 में स्थित आवास परियोजना अर्बन ओएसिस में 424 लग्जरी आवास पहले ही बेच दिए हैं। MR इंडिया के CEO कल्याण चक्रवर्ती ने PTI भाषा से बातचीत में कहा, हमने लगभग 4 वर्षों के अंतराल के बाद एक आवासीय परियोजना शुरू की। बाजार से मिली प्रतिक्रिया से हम खुश हैं। जेनरेटिव कृत्रिम मेधा में अगले 7 साल में भारत के GDP में कुल मिलाकर 1200 से 1500 अरब डॉलर जोड़ने की क्षमता है। EY इंडिया की एक रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट का शीर्षक आइडिया ऑफ इंडिया भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने में जेनरेटिव AI की क्षमता है। रिपोर्ट ने जेन AI को अपनाने में उद्योग की तैयारियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान की। रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव AI वित्त वर्ष 2029-30 तक भारत की GDP में संचयी आधार पर 1200 से 1500 अरब डॉलर जोड़ सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सभी क्षेत्रों में जेनरेटिव AI प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों को पूरी तरह से पूंजीकृत करके भारत संभावित रूप से अकेले वित्त वर्ष 2029-30 में 359 से 438 अरब डॉलर जोड़ सकता है, जो GDP के ऊपर 5.9% से 7.2% की वृद्धि को दर्शाता है। LIC 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि इसके लिए बीमा कंपनी विशेष योजना बना रही है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए उत्पाद पेश किए जाएंगे। उन्होंने PTI भाषा को बताया, जोर इस बात पर होगा कि अधिकतम ग्रामीण जनता को कैसे बीमा के दायरे में लाया जाए जिन्हें वास्तव में बीमा की जरूरत है। आने वाले दिनों में हमारे कुल कारोबार में ग्रामीण हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करने में LIC बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस दिशा में कंपनी ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। करदाताओं के अनुपालन में सुधार के कारण अप्रैल 2023 तक 5 वर्षों में GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 65% बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी। मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग माह के अंत तक 90% पात्र करदाता जीएसटी R3B रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। ये आंकड़ा जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में 68% था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।